संस्था को निर्धारित रात्रिकालीन कार्यक्रम प्रारंभ करने जा रहे हैं। महामनस्वी, महातपस्वी, यशस्वी, ओजस्वी, हृदय सम्राट आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन। मातृ हृदय साध्वी प्रमुखा जी के चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन। और यहाँ मेरे सहपाठी उपासक बंधु कांतिलाल जी कावड़िया, जिनकी आज उपवास है, और हम उनकी जो है वो इस तपस्या के बारे में सूक्ष्मता पूछते हैं उनको। और मधुर कंठ के धनी हैं, बहुत सीधे हैं, सरल व्यक्ति है। देखिए इनकी सरलता कितनी है कि 2008 से मेरे साथ में कर रहे हैं। ये खुद वरिष्ठ उपासक है लेकिन मेरे को छोड़ नहीं रहे हैं। ये कह रहे मेरे वरिष्ठता को कुछ नहीं करना है, मुझे जो चल रहा है आनंद आ रहा है। सबसे बड़ी बात बंधुओं आनंद की होती है। बहुत से ऐसे साधु संत सिंघाड़े हैं जो कि 30-30, 40-40 साल के साथ रहते हैं कि चित्त समाधि होती है। चित्त समाधि बहुत जरूरी है। हमें ये प्रेरणा लेनी चाहिए ऐसे साधु संतों से कि हमारे घरों में चित्त समाधि हो। हम अपने माता पिता को चित्त समाधि दें। सबसे बड़ा हमारा दायित्व है, संसारिक दृष्टि से माता पिता होते हैं एक जीते जागते तीर्थ होते हैं। वैदिक परंपरा में आपको पता है कि आता है कि शिव और पार्वती ने अपने दोनों पुत्रों कार्तिकेय और गणेश को जो ये कहा कि तुम्हारे दोनों में से पूरे विश्व का भ्रमण करके जो प्रथम आएगा उसको प्रथम घोषित किया जाएगा। कार्तिकेय तो निकल गए विश्व के भ्रमण के लिए, प्रथम आने के लिए। गणेश जी अपने पितृ भक्त थे, मातृ भक्त थे, उन्होंने तो शिव पार्वती के 2-4 चक्कर कटा लगाए और वो प्रथम आने ही थे क्योंकि वो नजदीक में थे। और वो जब आए तो शिव भगवान ने जो है उनको प्रथम घोषित गणेश जी को किया। तो हम कहना चाहते हैं एक सामाजिक पक्ष के रूप में कि हमारे माता पिता को चित समाधि की बात चली तो बंधुओं चित समाधि उनका आशीर्वाद देना चाहिए। उनका आशीर्वाद हमारे सामाजिक के लिए बहुत कार्य आता है। ये तो प्रसंगत बात चली गई, चल गई। आज हमारा विषय है शत जीव निकाय। आपको मैं एक पूछना चाहता हूं कि मैंने तो कई देशों के अंदर और भारत की कई विश्वविद्यालयों में और लगभग 50-55 दर्शनों के बीच में हमने जैन दर्शन के शत जीव निकाय की बात कही तो मुझे मालूम हुआ कि ऐसा अभूतपूर्व सिद्धांत विश्व के किसी भी धर्म दर्शन में नहीं है। ये हमारी एक बहुत बड़ी मौलिकता है। और ये विषय सिर्फ हम लोगों के बीच में नहीं रखा जाना चाहिए। ये विषय 36 को समस्त मानव जाति के बीच में रखा जाना चाहिए क्योंकि इस विषय से जो जुड़ी हुई बात है वह बात क्या है कि हम किस तरीके से मानव मात्र की सेवा कर सकते हैं। मानव मात्र की नहीं, प्राणी मात्र को हम किस तरीके से सुख पहुंचा सकते हैं। क्योंकि बंधुओं सबसे बड़ा धर्म वह होता है किसी को दुख ना हो। मन से, वचन से, शरीर से, कहने से, कहलाने से, अनुमोदना से किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं हो, स्वयं को भी कष्ट न हो। ये सबसे बड़ा धर्म है बंधुओं। और जैन धर्म भी यही कहता है, लिव एंड लेट अदर्स लिव। परंतु ये संभव कब होगा? ये संभव तब होगा कि हमको भेद रेखा जाननी पड़ेगी कि जीव क्या है और अजीव क्या है। हमको ये पता ही नहीं, मैं स्टेबल को ही जीव मानने लग जाऊं, माइक को ही जीव मानने लग जाऊं और इसको कष्ट ना हो इसी में लग जाऊं और मूल जो वास्तव में चेतन है उसको भूल जाऊं बंधुओं, तो ये बहुत बड़ी भूल होगी। इसलिए शत जीव निकाय का बहुमूल्य इंपॉर्टेंट सिद्धांत सिर्फ जैन दर्शन का है। इसकी मौलिकता है, इसका एक एक करके मैं वैज्ञानिक पक्ष, आध्यात्मिक पक्ष और सामाजिक पक्ष जो है आपके सामने एक एक जीव निकाय का रखूंगा। शत जीव निकाय, शत का मतलब होता है छह, जीव मतलब जिसमें चेतना है। जीव की परिभाषा, आत्मा की परिभाषा जैन दर्शन में की गई है असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को आत्मा कहते हैं, जिसमें असंख्य चेतनामय परमाणु, ये भौतिक नहीं है, ये चेतनामय परमाणु है, उसको आत्मा कहते हैं, उसको चेतना कहते हैं। हमारे यहाँ जीव चेतना आत्मा जीव के 23 नाम है, लेकिन वो सब एक है। कंफ्यूजन नहीं होना है बंधुओं कि अलग अलग, उसमें पुद्गल भी नाम आता है, लेकिन पुद्गल भौतिक नहीं है, वो दूसरी दृष्टि से नाम दिया गया है। आत्मों में जीव के 23 नाम आए हैं, वो सब एक है। जैन धर्म के अंदर जीव आत्मा चेतना सचेतन सचित अलग अलग नहीं है। इसीलिए सबसे पहली बात यह है कि आप कहीं कोई शब्द आ जावे तो कंफ्यूज नहीं हो कि ये क्या आ गया, क्या ये, जैसे कि आज दोपहर में बहनों ने क्रम चलाया था कि वेदांत के अंदर जीव अलग है, ब्रह्म अलग है, वो अलग विषय, उसकी चर्चा नहीं करेंगे हम, आज अपने विषय की चर्चा करेंगे। शत मतलब छह, जीव की मैंने परिभाषा दी, निकाय मतलब एक ग्रुप, निकाय का मतलब होता है ग्रुप, एक समूह। अब ये हो गया, मैं पहले पे इसके नाम बता देता हूं, सभी जानते हैं, लेकिन उसकी विवेचना को समझना, उसके वैज्ञानिक पक्ष को समझना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले पृथ्वी काय, अपकाय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय और तृष्य काय। पृथ्वी काय का क्या अर्थ हुआ? काय का मतलब शरीर, पृथ्वी मन जमीन। जिन जीव समूहों का, निकाय का मतलब समूह, जिन जीव या आत्मा समूहों का शरीर पृथ्वी हो उसे पृथ्वी काय कहते हैं, यानी एक झुंड है, ये पूरा एक समूह है, ये सब निगोद के जीव हैं और ये स्थावर है। जीव दो तरह के होते हैं, त्रस और स्थावर। जो त्रस जीव होता है वो चलते फिरते हलन चलन करते हैं, स्थावर होते हैं, वो स्थिर होते हैं बंधुओं, लेकिन आत्माएं वही है। हम भी त्रस रहे हुए हैं, हैं अभी, स्थावर भी रहे हुए हैं बंधुओं। ये अपना अपना कर्मों का योग है, उसकी शुद्धता अशुद्धता उस पर निर्भर करती है। लेकिन जैन दर्शन की एक बड़ी विशेषता है कि किसी भी आत्मा का जो मूल गुण है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र, अनंत बल, अनंत वीर्य, सभी आत्माओं का, चाहे त्रस हो स्थावर हो, वो त्रस स्थावर क्यों है? उन पर कर्मों के आवरण ज्यादा आए हुए हैं इसीलिए। लेकिन वो भी प्रगति करते करते सभी को मोक्ष जाने का यहां पर जो है पूरी स्वतंत्रता है, अगर पुरुषार्थ करे तो। अब पृथ्वी काय, पृथ्वी काय का मतलब हम जमीन के ऊपर से 400 इंच उसके ऊपर आई हुई बालू रेत या मिट्टी का जो आवरण है उसको फावड़े से हाथ से गैती से हटा करके और जब सख्त जमीन आती है उसको तोड़ते हैं तो वो पृथ्वी काय वहां से प्रारंभ होती है। इसमें मुरड़, माटी, खरड़, गेरू, चूना, लोहा, सोना, सिल्वर, अभ्रक, बोडल, जो जो पृथ्वी माँ की गर्भ से निकलते हैं वो सारे पृथ्वी काय बंधुओं। और देखिए एक डली के अंदर असंख्य निगोद के जीवों का समूह है। कितनी बड़ी बात है, यहाँ सामाजिक पक्ष जोड़ रहा हूं कि एक डली में इतना समूह है तो हम पृथ्वी काय के जीवों की इतनी हिंसा क्यों करें? हम गृहस्थी हैं, हमारे घर चाहिए, और तो कितने घर चाहिए, एक बेटा, दो बेटा, तीन बेटा, तीन घर समझ लो, क्या आपको 10 घर चाहिए, क्या आपको 20 घर चाहिए, ये सारा षट जीव निकाय आखिर जाकर की इच्छा परिमाण पे आएगा कि जो अनुवृत्ति है कि वो साधु तो हिंसा करते नहीं है, त्रस्त की भी नहीं करते, स्थावर जो चलते फिरते वो है तो है ही, वो रोकी भी जा सकती लेकिन वो चलाकर नहीं करते हैं, इसलिए और उनके लिए वो क्षम्य भी है। लेकिन हमारे लिए सीमा है कि हम कितने पृथ्वी काय के जीवों की हिंसा करें और क्यों करें, जब हम रोक सकते हैं तो क्यों नहीं रोकें। इसलिए बंधुओं, इस षट जीव निकाय का जो हमारा विशिष्ट जो सिद्धांत है, जो भगवान ने कहा है, जो आदमियों ने कहा है, तीर्थंकरों ने कहा है, उसमें से हम ये प्रेरणा लें, जीवन का लक्ष्य बनाएं कि मैं इतनी इतनी पृथ्वी को ही फोड़ूंगा जितनी मुझे आवश्यकता है, अपने जमीन के लिए, धंधे के लिए, जो भी है, ये इसके पीछे बड़ा हार्द है। अब मैंने आपको सामाजिक पक्ष बताया, आध्यात्मिक बताया, एक दली में असंख्य निगोद के जीव है। ये निगोद के जीव क्या है, इनका आयुष्य का बंधन साथ होता है। एक आलू में असंख्य जीव होते हैं, एक डली के में असंख्य जीव होते हैं, तो वो एक साथ आयुष्य बंधन करते हैं, एक साथ भोगते हैं और एक साथ मरते हैं। उस डली को जो ही फोड़ा गया तो ही उनकी एक साथ जो मृत्यु होती है, और एक साथ रह रहे हैं तो कर्मों का बंधन है, इस कारण इन्होंने इस गति के अंदर, स्थावर जो है गति के अंदर, पृथ्वी का स्थावर गति के अंदर जन्म लिया। तो बंधुओं, इनका साथ बंधन होता है। आयुष्य बंधन की जब बात आती है तो वो दो तरह का होता है, एक तो होता है कि दृढ़ आयुष्य बंधन, वह आयुष्य बंधन जो है वो निश्चित समय पर आकर के, जैसे हमारे निकाचित कर्म होते हैं, दृढ़ आयु बंधन को उसी समय ही वह जीव शरीर छोड़ेगा। लेकिन निगोद के जीवों के अंदर जो इनका दृढ़ बंध नहीं होता है, तो इनके ग्रुप के अंदर मरते हैं, साथ में मरते हैं, पहले भी मर जाते हैं, क्योंकि ये शिथिल बंध होता है इनका, तो ये इनकी बंध की प्रक्रिया है। तो ये आध्यात्मिक पक्ष हुआ, और वैज्ञानिक पक्ष की बात करता हूं। अब विज्ञान ने अब मानना चालू कर दिया है कि पृथ्वी काय भी, उनमें भी कॉन्शियसनेस है। विज्ञान आत्मा शब्द को अभी उन्होंने रिकॉग्नाइज नहीं किया, लेकिन कॉन्शियसनेस को उन्होंने रिकॉग्नाइज किया। हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता है, शब्द कोई भी ले हो, भाव वही होना चाहिए। कॉन्शियसनेस वह होगी जिसमें चेतना है, पुद्गल में चेतना नहीं है, ये अनकॉन्शियसनेस है। कॉन्शियसनेस तो भले कॉन्शियसनेस कहो, लेकिन कॉन्शियसनेस को उन्होंने माना है, और उन्होंने उदाहरण दिए हैं, सैकड़ों उदाहरण। एक उदाहरण आपको प्रस्तुत करना चाहता हूं कि पृथ्वी काय पर जो काम करने वाले जो जियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने बहुत से खड्डे खोदे, पहाड़ के ऊपर खड्डे खोदे, सॉफ्ट पहाड़ के ऊपर, चूना का पहाड़ हो या जैसा हो, सॉफ्ट हो उसकी बात कर रहे हैं, उसके ऊपर कई गड्ढे खोदे, और गड्ढे खोद करके हर गड्ढे के अंदर इंस्ट्रूमेंट लगाया, और प्रतिदिन उसकी ग्रोथ, हमारे जब घाव हो जाता है, घाव के ऊपर मरहम पट्टी करते हैं, तो घाव क्या है कि धीरे 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 भर करके चमड़ी एक होती है। ठीक उसी तरह से जो गड्ढे हैं, उनमें जो इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं, उससे ग्रोथ मालूम होती है, तो उन्होंने ग्रोथ मालूम की कि धीरे धीरे जो गड्ढे थे वो सब समतल हो गए, क्योंकि उनके घाव मिल गए। ग्रोथ क्यों हुई, क्योंकि उन्होंने कॉन्शियसनेस है, उसमें चेतना है, यह विज्ञान ने मान लिया है। विज्ञान कहता है कि हिमालय पर्वत, हम भी उसको पृथ्वी काय कहते हैं, प्रतिवर्ष जो पर्वत है 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष उनकी ऊंचाई बढ़ती है, बढ़ेगी कब, जबकि उनमें ग्रोथ होगी, हमारा शरीर भी बढ़ता है, बच्चा छोटा होता है, युवा बड़ा होता है,
फिर और आईएएस 16 18 साल के जाकर के छपुट का हो जाते हैं। ये ग्रोथ है, ये ग्रोथ कॉन्शियसनेस करती है, ये ग्रोथ आत्मा करती है, निर्जीव ग्रोथ नहीं करता है। बंधुओं, ये विज्ञान ने मानना चालू किया और विज्ञान धीरे धीरे आने वाले समय में षट निर्जीव निकाय में त्रस जीवों को सब मानते हैं वो, क्योंकि वो तो चलते फिरते मानना ही पड़ेगा। और वनस्पति का सर जगदीश चंद्र बसु ने बहुत पहले ही सिद्ध करके बता दिया था कि वनस्पति के अंदर हमारे जैसी चेतना है, वो सुख का अनुभव करते हैं, दुख का अनुभव करते हैं। छुई मुई का उन्होंने उदाहरण लिया कि छुई मुई के वो इतनी कोमल है कि उसके पास में हाथ अंगुली लगाई जाती है तो वो सिकुड़ जाती है। हमारी तरह वो चेतना जैसे हमारी कैसे सिकुड़ती है, कोई भय लगता है तो वैसे सिकुड़ जाती है। ऐसे अनेकों उदाहरण है, वो तो मान लिया है, बहुत पहले मान लिया गया है, इसलिए उसकी बात तो करनी नहीं है। तो मैं ये बात कह रहा था वनस्पति, अब बात कर रहा था पृथ्वी काय की। बंधुओं, इसीलिए हम निष्कर्ष के रूप में पर्युषण में ये संकल्प करें कि हम इतने निगोध की हिंसा नहीं करेंगे और जितनी हमको आवश्यकता है हम अनुवृत्ति है सीमा करें। सीमाकरण हमारे पे लागू होता है कि हम इतने मकान बनाएंगे, इतनी जमीन फोड़ेंगे, इतनी जितनी आवश्यकता है हमारी। तो ये पृथ्वी काय हुआ। अब मैं चलता हूं अपकाय, जिनका शरीर ऐसी बूंदे, ऐसा पानी का समुदाय, जिनका भी शरीर पानी हो, ऐसे निगोद के जीवों के समूह को अपकाय कहते हैं। बंधुओं, विज्ञान के बहुत विश्लेषण आए हैं, विज्ञान ने बताया है कि एक बूंद में लगभग 34,000 निगोद के जीव आत्माएं हैं। बताइए, एक बूंद में 34,000 हैं। हम जैनी हैं, पर्युषण पर्व मना रहे हैं, तो हमें 5 लीटर पानी में स्नान, मैं लगभग 15 साल से मेरा नियम है कि 5 लीटर में स्नान करता हूं। लगभग 15 साल के अंदर कभी ऐसी स्थिति हो कि मिट्टी लगी हो तो बात अलग है, कभी भी साबुन नहीं लगाया। 5 लीटर का मेरा नियम है, जब से मैं संस्था में गया हूं तो कोई मेरा शरीर बदबू नहीं मार रहा है। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि हम इसका संकोच करें। बहने देखे, बहनों के बहुत ज्यादा काम पड़ता है। और ये बंधुओं, जल है तो जीवन है। वैज्ञानिक लोग कहते हैं अगला विश्व युद्ध पानी के लिए लड़ा जाएगा। आपके सामने देखिए, हम कभी सोचते थे कि पानी का पैसा लगेगा? एक बोतल 2 रुपए से स्टार्ट होके 20 रुपए में आ गई है और समय जल्दी भाग रहा है। आने वाले में यही पानी की बोतल मिनरल वाटर की 50-100 रुपया हो जाए तो बड़ी बात नहीं, क्योंकि शुद्ध पानी की कमी हो रही है, स्रोत सूख रहे हैं, क्योंकि हम इतना दोहन कर रहे हैं पानी का कि हम आने वाली जनरेशन, ये सामाजिक पक्ष में सबको इंक्लूड कर रहा हूं, हमारे आने वाली पीढ़ियों को हम रोटी कपड़ा मकान पानी ये नहीं छोड़ेंगे तो हमारी पीढ़ी कैसे जिंदी रहेगी। बंधुओं, इसलिए मैं सामाजिक पक्ष को भी देखना है। और अगर हम ये संकोच करते हैं, ये हम विवेक जागृत करते हैं, क्यों? विवेक ये धम्म माई है, विवेक ही धर्म है। दूसरी लंबी चौड़ी धर्म की अपन चर्चा नहीं करें, छोटी छोटी बातें करें, विवेक ही धर्म है। किसी को दुख ना हो, किसी को दुख ना दें, ये सबसे बड़ा धर्म है बंधुओं। तो हम इतना हमारे सामने विज्ञान के डाटा है, तो हम जैन धर्म षट जीव निकाय सिद्धांत को मानने वाले, जानने वाले हम लोग एक उदाहरण बने। जैन लोगों का ये दायित्व है कि वो 36 कोम के सामने, पूरी विश्व की मानव जाति के सामने, जैसा मैंने पूर्व में बताया कि ये सिद्धांत अन्य धर्म में, अन्य दर्शन में उपलब्ध नहीं है। तो जब हमारा दायित्व तो बनता है कि हम इसका उपयोग करें, पानी उतना ही गिरावें, उतना ही उपयोग में लें जितनी हमें आवश्यकता होगी। जब ये बात दूसरों के सामने हमने कई बार करके देखा है, बता के देखा है कि आप इतना कम पानी क्यों गिराते हो। हमारे कई प्रोफेसर लोग साथ में होते हैं, वो फटाफट बाल्टी भरी, एक बाल्टी, दो बाल्टी, पांच बाल्टी, हमने, और वो जब मेरे को देखता है कि पांच लीटर में भी नहा लिया, कर लिया, कि अरे इतनी इतनी कंजूसी क्यों करते हो। मैंने कहा भैया ये कंजूसी नहीं है, तुम वेदांत वाले हो, तुम पुराण वाले हो, तुम वेदों वाले हो, लेकिन हमारे धर्म में ये सिद्धांत है कि इसके अंदर निगोद की असंख्य जीव है, तुम भी क्यों हिंसा कर रहे हो। हिंसा को तुम मानते हो, हम मानते हैं, हिंसा अहिंसा को सब मानता है, परंतु उनकी षड्जीव निकाय की परिभाषा उनके पास नहीं है। हम कहते हैं भाई ये रोको, तो उनके बात में समझ में आई। षड्जीव निकाय भगवान ने 2500 वर्ष पूर्व दिया, उसकी प्रासंगिकता आज उस समय से ज्यादा है, क्योंकि हमारे षड्जीव निकाय का पानी का पर्यावरण का बहुत दोहन चालू हो गया। षड्जीव निकाय पर्यावरण है। अगर मैं मनोवैज्ञानिक और पर्यावरण की भाषा में कहूं, षड्जीव निकाय और पर्यावरण अलग अलग नहीं है। आज पर्यावरण पे बड़ी बड़ी सेमिनार हो रही है, सभी जानते हैं, प्रबुद्ध लोग, कॉन्फ्रेंस हो रही है। आज विश्व चिंतित है कि हमारा सारा वातावरण दूषित हो रहा है। दिल्ली में आपको पता है कि वन डे अल्टरनेट डे पे गाड़ियां चलाई गई, क्योंकि इतना कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया कि आदमी जिंदा रहने की स्थिति नहीं, और हर शहर की होने वाली है। परंतु हमारे भगवान ने, हमारे तीर्थंकरों ने हमें 2500 साल पहले ही बता दिया था कि इस प्रकृति मां की रक्षा करो, इसकी संरक्षण करो, क्योंकि इनका इनके साथ में कोई तरह का दोहन करना पाप है। हमको पाप और धर्म से जोड़ के बताया गया, तो हमारे लिए एक कानून बन गया, एक नियम बन गया। अब सरकार भी समझ रही है, अब सरकार के सामने हम षड्जीव निकाय का साहित्य निकाल के रखते हैं, तो उन्होंने कहा दिस इज ए रियल थिंग। चाहे भारत सरकार हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे राज्य सरकार हो, मानने लग गए और वो हिमायत कर रहे हैं कि इसके अंदर भगवान महावीर को श्रेय दे रहे हैं कि उन्होंने सबसे पहले, वो सबसे बड़े प्रकृति के संरक्षक थे, जिन्होंने इतना बड़ा सिद्धांत देकर के संरक्षण किया। अब मैं अपकाय की एक बात, अभी लेटेस्ट जो है शोध आई है, महाप्रज्ञ जी के सामने वो वैज्ञानिक आया था जिसने पुस्तक लिखी, और उसने करके बताया कि 10-20 उसने 50 से प्रयोग किया, लेकिन वहां गुरुदेव के सामने तो 8-10 पात्र लेकर के उसमें अलग अलग तरह का पानी डाला, झरने का पानी, ट्यूबवेल का पानी, खुले कुएं का पानी, अन्य अन्य पानी कहीं से लाके, अलग अलग जगह के लाकर के पानी पात्र में डाले, और वो मशीन लेकर के आया था, और फिर उसको इतना ठंडा किया कि वो सारे पात्र के अंदर, मैं भी वहां मौजूद था, और गुरुदेव ने उस पुस्तक के ऊपर कहा कि देखिए कितनी बड़ी शोध हुई है, महाप्रज्ञ जी के जमाने की बात है, वो जापानी वैज्ञानिक था। अब जितने जितने पात्र थे उसके अंदर क्या उन्होंने वो कोई इंस्ट्रूमेंट डाला, और उसके माध्यम से एक व्यक्ति ने बोल करके और एक एक पात्र को जो है ये संदेश भेजा, तुम ठंडे जल हो, तुम शीतल हो, हमारी प्यास बुझाते हो, हम तुम्हारे ऋणी हैं, हमारे हम तुम्हारे कृतज्ञ हैं, तुम नहीं हो तो हमारा जीवन नहीं चलेगा। दूसरे को कहा तुम बहुत गंदे हो, तुम खारे हो, तुम मनुष्य के पेट में चले जाते हो तो बीमारी पैदा कर देते हो, इतना गंदा पानी हमको नहीं चाहिए। किसी को अच्छा कहा, किसी को बुरा कहा, यानी राग द्वेष के संदेश भेजे गए। तो उनके देखिए जब उनका बर्फ आया तो जिनको अच्छे संदेश भेजे गए पानी के अंदर, उनका बहुत सुंदर चित्र बर्फ बना, गोल एकदम चौकोर या ऐसी खड़ा बना, आयताकार बना, और जिनको गलत थलत संदेश दिया उनकी आकृति बेडोल बनी। उससे उसने निष्कर्ष निकाला, पुस्तक है ये, वो छपे हुए हैं, वेबसाइट पे भी उपलब्ध है, मार्केट में भी उपलब्ध है, उसने निष्कर्ष, और हमारे जीवराजी जैन है बहुत सी दिगंबर में श्वेतांबर में संस्थाओं में, वो इसके विशेषज्ञ हैं, वो इस पर काम कर रहे हैं और वो ये बता रहे हैं कि ये वैज्ञानिक और वैज्ञानिक है कि वैज्ञानिक दृष्टि से अपकाय जो है निगोद के जीवों का समूह है। तो बंधुओं जो आकृतियां बनी उससे निष्कर्ष निकाला उसने कि ये जो है वो खुद अनुभव करते हैं, अच्छा बुरा अनुभव किया उसके अनुसार आकृति बनी, उसके अनुसार उनका सारा शरीर बना जो बर्फ बना। तो ये विज्ञान मानने लग गया है। तो हम तो धर्म की दृष्टि से और इसकी दृष्टि से पर्युषण पर्व के ऊपर इस विषय को ध्यान में रखते हुए एक अपनी निश्चित धारणा बनावे, हम पानी का जो उतना ही उपयोग करेंगे जितना हमको आवश्यकता हो, फालतू उपयोग नहीं करेंगे, नल टूटी चलती नहीं रहेगी, ठीक है, पानी बहता नहीं रहेगा, ये हमारा परम कर्तव्य हो जाएगा। पृथ्वी काय अपकाय तेजस काय की बात करते हैं बंधुओं। तेजस काय का मतलब अग्नि, सूर्य की अग्नि, जठरा अग्नि, और जो अग्नि पैदा होती है अपने दावानल होता है, और अपन आप चले जाओ कोयलों की खान के अंदर अपने आप अग्नि पैदा हो जाती है। तो ये सारी जितनी तरह की अग्नि है इसके ऊपर प्रयोग हो रहे हैं, और वहां नीचे जाकर के देखा कोयलों की खानों के प्रयोग की एक शोध आई, उसके अंदर उन्होंने देखा कि 800 डिग्री सेंटीग्रेड 100 पे पानी उबलता है, लेकिन ये अग्नि है खुद उबालने वाली है। उन्होंने देखा कि 800 डिग्री के ऊपर जो कण थे, इसके अग्नि के कण थे, वो क्या के विस्तार ले रहे हैं, अपनी शक्ल बना रहे हैं, उसके उन्होंने फोटो लिए, और फोटो लेकर के उन्होंने उसके ऊपर निष्कर्ष निकाला कि इनके अंदर भी जो है वो चेतना शक्ति है। ये अभी अग्नि पे काम चल रहा है, इतना पावरफुल रूप से नहीं माना गया है, लेकिन जो है ये भगवान का कहा हुआ है। तो हम अपनी अग्नि खास तौर से, चाहे पेट्रोल की हो, चाहे डीजल की हो, चाहे हमारी भट्टी हो कारखानों की, खास तरह के जो कपड़े के काम करने वाले भट्टी की जो अग्नि है कितनी काम में लेनी, वो स्वयं तो निगोद के जीव है ही है, उसमें जलने वाले कितने जीव हैं, हमारी व्यवस्था है, हमारा धंधा है, पर कितना प्रश्न आके खड़ा होता है कि लिमिट कीजिए, इच्छा परिमाण। सबसे बड़ा सिद्धांत जो भगवान ने दिया है कि इच्छाओं पर अंकुश करो, आपको कितना चाहिए, 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ 100 करोड़, लेकिन 100 करोड़ के बाद भी तो आप कहिए इसके बाद मैं जो है वो इसकी अर्निंग नहीं करूंगा, या मेरे पुण्य कर्म से आ रहा है तो समाज को दूंगा, लोगों की भलाई के लिए दूंगा, जैसा कि जो पुराने हमारे 10 श्रावक थे भगवान के, आनंद श्रावक जैसे, वो यही करते थे अपने लिए, लिमिट उस वक्त के अरबपति थे, जो 10 श्रावक भगवान के प्रमुख है वो अपने लिए वही 1 गमछा 2 ड्रेस हैं, ये वो इतना भोजन अपने लिए। और आज भी भाइयों, बिल गेट्स, आपने सबने सुना होगा बिल गेट्स की, अगर आपने देखी है या पढ़ी है उसकी बायोग्राफी, तो वो आज विश्व का सबसे धनी व्यक्ति है, लेकिन उस बायोग्राफी के अंदर उसका वही 50 साल पुराना मकान, वही 50 साल पुराना फर्नीचर, वही 50 साल पुरानी गाड़ी, उसमें वो मस्त रहता है, उसकी अरबों खरबों की संपत्ति सब ट्रस्ट के माध्यम से मानव जाति के उत्थान के लिए जाती। बंधुओं, हमारे भगवान ने कमाने का कहीं नहीं कहा कि व्यक्ति कमाए नहीं, करोड़पति हो या अरबपति हो, वो कुछ नहीं नहीं, लेकिन प्रश्न ये है कि वो अपने लिए कितना उपभोग में आता है। और मैं सामाजिक पक्ष की बात कहता हूं बंधुओं, याद वही किया जाएगा, व्यक्तिगत रूप से हम जितना अपना आत्मा का शोधन करेंगे हमारी गति सुंदर होगी, लेकिन हम सामाजिक प्राणी हैं। हम समाज में वही व्यक्ति याद किया जाता है जो तन की कितनी सेवा देता है, मन की कितनी सेवा देता है और धन की कितनी सेवा देता है। बंधुओं वही याद, पुराना इतिहास उठा करके देखिए, सावों का साधकों का इतिहास देखिए, जिन्होंने कितनी धार्मिक सेवा की, कितनी साधु संतों की सेवा की, ज्ञान दान दिया, सहती दान दिया। तो बंधुओं वही याद किया, दान की बात आ गई तो अभय दान, उस पर कुछ बात करना चाहता हूं बंधुओं की। सहती दान हमने दोपहर में आज काफी डिस्कस किया था, सहती दान तीन बड़े दान है और तीनों ही दान है आध्यात्मिक दान है। सहती दान उन लोगों को जो पांच महाव्रती हैं, अध्यात्म का प्रचार कर रहे हैं, जीवों का कल्याण करते हैं पांच महाव्रती, उनको अन्न पुण्य, पान पुण्य, लयन पुण्य, शयन पुण्य, मन पुण्य, वचन पुण्य, नमस्कार पुण्य, नौ तरह के पुण्य से जोड़ दिया गया है। उनको हमें खूब दान देना चाहिए, सहती को खूब सहती बढ़े, वो हमारा दान पुण्य हमारे पुण्य के लिए आता, निर्जरा के लिए आता बंधुओं, क्योंकि हम पुण्य के लिए काम नहीं करते। हमारी तेरा पंथ परंपरा में पुण्य की कोई विशेष चर्चा नहीं है, निर्जरा की चर्चा है, क्योंकि पुण्य तो इसका बहुत लंबा विवरण है। पुण्य तो ऑटोमेटिकली बोनस के रूप के अंदर आपको गेहूं के साथ खाकले के रूप में ऑटोमेटिक मिलेगा, उसके लिए न तो चिंता करने की जरूरत है न उसके लिए कार्य करने की, जो ऑटोमेटिक मिलेगा यही बात चलेगी जब बताएंगे कि हमारे आराध्य भिक्षु स्वामी की एक विचित्र परूपना थी, दान दया और जो है पुण्य की स्वतंत्र बंध नहीं है, ये भी हमारी तेरा पंथ की विशिष्ट है। अभी कुछ समय पहले आचार्य मां प्रज्ञ जी के समय में बात चली कि इतने इतने गुरु है, देव गुरु धर्म की, देव की बात ठीक है, धर्म की बात भगवान की, गुरु की बात चली तो प्रश्न आया कि हमारे भिक्षु स्वामी तो स्वतंत्र बंध नहीं मानते हैं, कुछ जैन गुरु स्वतंत्र बंध पुण्य का मानते हैं, भूखे को भोजन दो और प्यासे को पानी पिलाओ, सहयोग करो, उसको पुण्य स्वतंत्र बंध मानते हैं। तो इसके ऊपर बहुत ही लंबी चर्चा महाप्रज्ञ जी के समय चली और महाप्रज्ञ जी ने कहा कि देव गुरु धर्म में गुरु एक होना चाहिए, उसके द्वारा जो भी प्ररूपित, जैसे हमारे जो है भिक्षु स्वामी के द्वारा जो स्वतंत्र बंध नहीं है, इसीलिए इसके अंदर हमें गुरु धारणा में गुरु को एक ही मानना पड़ेगा। सब पूजनीय है, व्यवहार पक्ष में सब जो है स्तुत्य है वो बातें अलग है, लेकिन देव गुरु धर्म के अंदर, क्योंकि गुरु के अंदर प्ररूपना उनकी सिद्धांत अलग अलग होते हैं। तो मैं बात पृथ्वी का है, अप का है, तेजस का है, वायु का है बंधुओं, वायु का है जिसके अंदर हम जी रहे हैं, हम श्वास ले रहे हैं, बात कर रहे हैं, थैसेक्स नाम के इसके अंदर वायरस होते हैं। इस पर थैसेक्स वायरस पे बहुत बड़ी शोध चल रही है और उन्होंने विज्ञान ने ये देखा, इसके पर भी पूरी शोध आई है कि थैसेक्स के जो वायरस है पूरे इस वायुमंडल के अंदर फैले हुए हैं। वो वायरस इस वायुमंडल के वायु के खुद के हैं, अलग से तो बहुत से वायरस होते हैं जो कि वायुमंडल में फैलेंगे, लेकिन वायु के खुद के वायरस है, यानी वो निगोद के जीव, वायु जो है वो षट जीव निकाय का जो वायु काय है उसके जीव है। तो उसकी भी हम सभी जानते हैं कि उनका भी हनन ना हो, हम ज्यादा से ज्यादा सामायिक में करते हैं। इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है ये कि हम पट्टी रखते हैं, उनका हनन ना हो, उनका कष्ट ना हो, और खास तौर से खुले मुंह हम कोई भाप निकालें या इस तरीके से करें कि उनका हो, तो ये उसका हमारा सामाजिक पक्ष है, हमारा आध्यात्मिक पक्ष है। पृथ्वी का है, अप का है, तेजस का है, वायु का और वनस्पति का है बंधुआ। वनस्पति काय के अंदर वनस्पति जो है वो अपन जो 84 लाख जीवायोनिक प्रत्येक वनस्पति का है, प्रत्येक वनस्पति काय में एक वनस्पति के अंदर एक बीज होता है, जैसे भिंडी है उसके बीज प्रत्येक वनस्पति के दिखते हैं, लेकिन निगोद के जीव जो काई है या इस तरीके की चीजें हैं उसमें असंख्य निगोद के जीव है। तो हम इसका पूरा विवेक करें कि जहां पर काई हो वहां पे ग्रीन ग्रीन दिखता हो वहां पर पैर न दें, क्योंकि असंख्य निगोद के जीव है। और इसमें व्यवहार राशि और अब सबसे बड़ा खाता जो है वनस्पति काय का है। अव्यवहार राशि के लिए कहा जाता है कि जब कोई भी जीव मोक्ष जाता है तो अव्यवहार राशि का एक जीव निकल करके वनस्पति के व्यवहार राशि में आता है, और व्यवहार राशि के बाद में वो अपनी उन्नति करते करते वो भी मोक्षगामी हो सकता है। पृथ्वी काय, अपकाय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, त्रस काय की बात हम करते हैं। त्रस काय में एक इंद्रिय, हम अपने बात की स्थावर जीव, त्रस प्रारंभ होता है बे इंद्रिय, ते इंद्रिय, चतुरेंद्रिय और पंचेंद्रिय, जिसके स्पर्शन रसन दो होते हैं बे इंद्रिय ग्रहण, तीन इंद्रिय वाला स्पर्शन रसन ग्रहण चक्षु, चार इंद्रिय वाला स्पर्शन रसन ग्रहण चक्षु, स्रोत वाला पांच इंद्रिय जैसे हम हैं। बंधुओं, हम जो है लापरवाही से, अविवेक से ऐसे त्रस जीव जो दिख रहे हैं, कीड़ी है, मकोड़ा है, कुछ भी है, इनका पूरा सावधानी से हम उपयोग लें, चलने में, फिरने में, पलेवना में, घर में, जगह में, दुकान में, सब जगह। मूल बात यह है, क्षत जीव निकाय का जो सिद्धांत है हमारे समझ में अच्छी तरह से आना चाहिए। जब यह हृदयंगम हो जाता है तब हिंसा और अहिंसा की बात चलती है। इनको कष्ट पहुंचाना हिंसा है, इनको साता पहुंचाना अहिंसा है। भिक्षु स्वामी ने कहा है, जीव जीवे तो दया नहीं, सभी जानते हैं। कितना बड़ा सिद्धांत दिया है, कोई जीव जी रहा है आपकी दया नहीं है, मरे तो हिंसा मत जान। छिपकली अपने भोजन के लिए कई बार हम देखते हैं जीवों को भस्म करती जा रही है। मरे तो हिंसा मत जान, मारण वाले ने हिंसक कही हो, नहीं मारे थे दया गुण खान। ऐसे हमारे गुरुओं का सिद्धांत षट जीव निकाय से जुड़ा हुआ है। इसलिए बंधुओं, हमें ध्यान करना है, हमें विवेक जगाना है कि ऐसे जीवों का हम संरक्षण करें। ये पर्यावरण का संरक्षण है, ये हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए हमको छोड़ रहे हैं, उनकी व्यवस्था करके जा रहे हैं। पर्यावरण रहेगा तो हम रहेंगे, पर्यावरण नहीं रहेगा हम जीवित नहीं रहेंगे। मैं एक पर्यावरण की उदाहरण की बात देना चाहता हूं बंधुओं। इस विज्ञान ने बहुत तरक्की की है, कितने कितने बड़े आविष्कार किए हैं, पर विज्ञान अभी तक ऑक्सीजन पैदा करने में फेल रहा है। विज्ञान के पास में ऐसी कोई फैक्ट्री नहीं कि वो ऑक्सीजन पैदा करे। बोटलिंग कर सकती है, ऑक्सीजन भर सकती है, लेकिन पैदा करने की उसके पास के अंदर कोई तरकीब नहीं और हो भी नहीं सकती। ये ऑक्सीजन पेड़ पौधे पैदा करते हैं, उनमें प्रकृति की ऐसी। और जो हमारा जो ये पीपल का पेड़ है 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, इसीलिए पुरानी परंपराओं के अनुसार में ये पूजनीय होता है। पूजनीय क्यों है? पुराने समय में नदी नाले पहाड़ पेड़ पौधे सबको पूजा, उसके पीछे बड़ा लॉजिक था। ये हमें जीवन देते हैं। अगर पेड़ पौधे ना हो बंधुओं तो क्या हमें प्राणवायु मिलेगी? हम जिंदे रहेंगे तो क्या हमारा दायित्व तो नहीं है कि हम उनका संरक्षण करें? हमें तो उसको पाप पुण्य के साथ जोड़ा गया है, धर्म अधर्म के साथ जोड़ा गया है। हमें तो समझना चाहिए कि हमारे भगवान सुपर वैज्ञानिक थे, तो अल्ट्रा वैज्ञानिक थे, और उन्होंने ऐसी बातें दी है तो हमें इको फ्रेंडली होना है, पर्यावरण का संरक्षण करना है। और हम कर सकते हैं क्योंकि हमारे ब्लड के अंदर हिंसा अहिंसा धर्म अधर्म पाप पुण्य की बातें हैं। तो बंधुओं, इस तरीके से आप देखिए कि जो आयुर्वेद है, आयुर्वेद पूरा का पूरा पौधों के ऊपर, जड़ी बूटियों पर आधारित है। ये एलोपैथी पहले नहीं थी, आज से 1000 साल पहले सिर्फ नेचुरोपैथी थी, एलोपैथी थी। नेचुरलपैथी में यही जो हमारे 5 तत्व है, कौन से, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इनका यूज करना, इनका, इनसे ही सारा जो दवाई की जाती थी। आज भी प्राकृतिक चिकित्सा का जो सही इलाज है, एलोपैथी, जो जितनी भी आयुर्वेद है वो सारा इन पेड़ पौधों जड़ी बूटियों के ऊपर। ये बहुत लंबा विषय है। बाबा रामदेव के जो आचार्य जो है, क्या नाम उनका, बाल किशन जी, कितना बताते हैं संस्कार चैनल पे। तो बंधुओं, 9:30 बज रहे हैं, तो हम जो है इस षट जीव निकाय के महान सिद्धांत को जीवन में उतारें, इसको समझें, इसकी गहराई में जाएं और जितना संभव हो इनका रक्षण करें। अब प्रतियोगिता नहीं है हमारे उपासक, कुछ 10-15 मिनट चलाना है या स्टॉप करना है? 9:30 तो बज रहे हैं, जैसे आप लोगों को, हमारे तो ये टेप चलती रहती है। उपवास भी आप लोग गीत गा रहे हैं, उपासक जी एक मधुर गीत गा रहे हैं।
चाली रे चाली रे सपरी रेलगाड़ी लागे घनी मन भावनी हिम्मत वाला हीण पर चढ़ पावे कायर तो खड़ा खड़ा देखता रह जावे बेला तेला चोला इंदा छोटा जेसन अठाई तो कर जाए सीधो कनेक्शन जो बिछड़ पावेला शिवपुर में जावेला जो बिछड़ पावेला शिवपुर में जावेला बात पड़े मारी माननी चाली रे तपरी रेल गाड़ी लागे गणी मन बावणी तपरो गर्मी तपरी गर्मी तेज ने बढ़ावे तन मन रे देश ने मिटावे बिना त्याग जीवन अधूरो है तपशारी ओटलियां होवे पूरो है एक पल रो भी थे आलस ना करो अब एक पल रो भी थे आलस ना करो अब आहे मारी दम जावनी नीनी चाली रे चाली रे तपरी रेल गाड़ी लागे घनी मन भावनी कर लियो रे इन पर सवारी शिवपुर रे पथ पर जावनी चाली रे सपरी रेल गाड़ी लागे घनी मन भावनी
तो शनिवार
को होता है
ना
वो कॉमन नहीं है तो ज्ञान चला की जो एग्जाम देने वाले उनके लिए
तो क्या दिया
आपको वो उनके लिए है ना कॉमन नहीं है ना ये तो पेपर नहीं सबके लिए कहते हैं
जैन विद्या में जो भाग लेना
जो ले रहा उनको तो आपकी सप्लाई कर देना ना आप
ऐसे लेके जाएंगे अभी मेरे
अच्छा उनके घर वाले है वो लेके जाएंगे तो आप बोलो
हाँ बोलो
जैन विद्या प्रश्नों की प्रतियोगिता है जैन विद्या सत्ता के अनुरोध में सेंटर से तो हम उपाश्री जी के अतिथि में ये मना रहे हैं इसमें हमने जैन विद्या भाग एक से चार पर आधारित पुस्तक सृजन किया है इसमें से लगभग 150 प्रश्न है इस पर आपको घर पे ले जाके लगभग शनिवार को शाम को 7:30 से 8:30 जो लोग जैन विद्या में जिसने भाग लिया है इसमें फॉर्म भरा है और जो ज्ञानशाला के बच्चे इसमें सब भाग ले सकते हैं उनके यहाँ पे ग्रुप बना के फिर एग्जाम लिया जाएगा मतलब कंपिटिशन लगाया जाएगा जिसको भी पेपर चाहिए हमसे अभी लेके जा सकते हैं बाद में हम ज्ञान साला बच्चों को घर पर भी पहुंचा सकते हैं जिसको अभी चाहिए जो जैन विद्या में जिसने भाग लिया है
और कोई सूचना
अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए सुनिए मंगल पाठ नमो रियंतान नमो सिद्धान नमो आर्यान नमो उज्जैन नमो लोए सप सावण ऐसो पंच नमुकारो सप पापनाथनो मंगलान सभ्य सिंह परमंग हवई मंगलंग चतारी मंगलंग अरंता मंगलंग सिद्धा मंगलंग साहु मंगलंग केवली पनत्तो धमो मंगलंग चतारी लोगुत्तमा अरंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पनत्तो धमो लोगुत्तमो चतारी शरण पहुंचामी अरहंते शरण पहुंचामी सिद्धे शरण पहुंचामी साहु शरण पहुंचामी केवली पनत्तं धम्मं शरण पहुंचामी धम्मो मंगल मुक्तिटं अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमं शांति जस्स धम्मे सयामणो चैता भार अम्बासं चक्रवर्ती महिटियो संति संति करे लोए पत्तो गई मनोत्तरं देव दानव गंधर्वा जकरकस किन्नरा बम्बयारी नमं संति दुख रंग जे करंति तं मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं तोल भद्राद्या जैन धर्मो सुमंगलं मंगलं मतिमान भिक्षु मंगलं बार मल्लके मंगलं राय चंद्राद्या मंगलं तुलसी गुरु महाप्रज्ञोसु मंगलं महाशमणोसु मंगलं तेरा पंथोसु मंगलं विघ्न हरण मंगल करण काम भिक्षुनो नाम गुणयो लख स्मरण किया तरे चिंत्या का विघ्न हरण मंगल करण काम भिक्षुनो नाम गुणयो लख स्मरण किया तरे चिंत्या का विघ्न हरण मंगल करण काम भिक्षुनो नाम गुणयो लख स्मरण किया तरे चिंत्या का तरे चिंत्या क्यों भाई और बहनों हमारी प्रस्तुति में आपको आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप एंजॉय कर रहे हो ना आध्यात्मिक रूप से वो जरूरी है फॉर्मेलिटी नहीं होनी थी